कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्तिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हा देवी काकु हर गद गदयाद्य वाचा जाचे निपत्तभो विदंडवत उद्भटारति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनं अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दिकचण्डेवरं जटं जागुतरोतकमुदिदतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं विलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्द्रा। वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्नीयपायन्मानमुभेक्षुमन्दं कृपाम्बुदिरिजा परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रया श्रीचैतन्यमनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदं। यं प्रव्रजं तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्णम्। कल अद्वैताचार्य के तत्व के संबंध में हमने बताया था, यद्यपि वो अर्धनास्तिक पांचों ये दार्शनिक मतभेद हैं विचार, उनका खंडन ही भक्ति नहीं, अथवा ये कुछ नहीं है और सृष्टि का व्यापार कैसे होता है ये भी भक्ति नहीं है। तभी जो लोग इसको नहीं जानेंगे प्रचार तो कर ही नहीं सकते, अधिकंतु दूसरे की बातों में आकर के भक्ति को छोड़ भी सकते हैं। इसलिए भक्ति का पक्ष स्वपक्ष तटस्थ विपक्ष ये सब जानना भी जरूरी है। इसलिए अन्नाभिलाषिता शून्य ये विपक्ष और कुछ ऐसे हैं जो तटस्थ हैं उनको भी ये सब को जानना पड़ता है। भक्ति में भक्तिमय भक्ति संबंधी भक्ति अविरोधी भक्ति तटस्थ और भक्ति के लिए उपकार भक्ति के लिए अनुपकार ये सब चीज़ों को जानना कर जान करके और तब भक्ति के जो अनुकूल हैं या भक्ति जो मय है ये सबको ग्रहण करना होता है। जो इसको नहीं जानेगा तो भक्ति के जड़ में वो प्रवेश नहीं कर सकता है, न दूसरों को समझा सकता है
और न खुद ही समझ सकता है।
भक्ति मय जो भाव है, भक्ति मय भाव मैंने भक्ति का जो मूल चीज है, जैसे किसी का दास रस है, सख्य रस है, वात्सल्य है, मूल भावना ही भावमय। कोई साधक में ये है ही नहीं है, ये मूल भाव हमारा क्या है, कृष्ण से हमारा क्या मूल संपर्क है, तो वो भजन क्या करेगा। इसलिए ये जब गहरे भक्ति रस में जब जाएंगे तो उनको जानना पड़ेगा, और यही चीज पीछे से स्थाई भाव होकर के आता है। ये भावमय है। भाव संबंधी क्या है? भाव संबंधी वह है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, और उसमें भी उस भाव के संबंधी हो, परिकरों के जो भाव हैं, परिकरों के जो कृष्ण के प्रति जो, ये सब को भी जानना पड़ेगा। और कुछ है भाव संबंध में भी कुछ स्वरूपगत हैं और कुछ ऐसे हैं जो उपादान कारण है, कुछ निमित्त कारण है। भाव के जो निमित्त कारण है, भाव के जो उपादान कारण है, कैसे समझेगा? साधारण लोगों के दिमाग के बाहर है, किंतु वो जब तक नहीं आएंगे तब तक वो शुद्ध भाव में प्रवेश ही नहीं करेगा। कोई निमित्त उपादान कारण, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, पाद सेवन इत्यादि, ये सब जितने हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास से मुक्ति, श्रद्धा, ये सब निमित्त है,
उपादान।
कुछ निमित्त कारण है जो प्रेरणा देने वाले हैं। भक्ति में प्रेरणा कौन देगा? साधुओं का संग इत्यादि है, रसिक वैष्णवों का संग है, इससे ही वो होगा। उपादान कारण खुद करेगा, अनिमित्त कारण दूसरे के द्वारा होगा। कौन दूसरा? जो रसिक वैष्णव होंगे उनके द्वारा जो प्राप्त होता है। और फिर कुछ ऐसे चीज हैं जो उपकारी भी नहीं है, उपकारी भी नहीं है, जैसे पुराणों का श्रवण और पुराणों के तत्वों का ये सब ज्ञान, न तो उपकारी है न उपकारी है। तटस्थी रख लो तो, किंतु फिर भी प्रचार के लिए ये तो जानना है, किंतु भजन के लिए ये सब दूसरों को कुछ समझाना होगा। यदि कोई प्रश्न करेगा तो उसके उत्तर देने के लिए ये कुछ चाहिए, नहीं तो ये उपकारी भी नहीं। पुराणों का जो श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त और जो पुराण हैं, मान लिया है, उसके पढ़ने से क्या लाभ होगा और हानि क्या होगी? हानि भी कुछ नहीं है, लाभ भी विशेष कुछ नहीं है। राधा जी का भाव उसमें मिलेगा, गोपियों का भाव मिलेगा, तो लाभ भी नहीं। किंतु कोई कोई ऐसा पूछ सकते हैं, तो जिनको एकांतिक रूप में इसमें रुचि है वो सब उतना अधिक नहीं पढ़ते, कोई कोई पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। कोई कोई उपकारी हैं, उनको ग्रहण करना पड़ेगा, ना? भजन तो नहीं है किंतु उपकारी, जैसे तुलसी में पानी देना उपकारी है, वैष्णव चिन्हों का धारण करना, कुछ लोग हैं वैष्णव चिन्हों को धारण नहीं करते, तिलक माला इत्यादि नहीं लेते, किंतु है ये उपकारी है, उसको ग्रहण करना चाहिए। कुछ अनुपकारी हैं, जैसे ब्रज का भाव चाहते हैं, द्वारका ध्यान इत्यादि, महिषियों का ध्यान, ऐसे लोगों का संग जो कृष्ण भजन में जिनका नहीं है, ये अपकारी है, इनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो फिर भजन ही नहीं, ये भाव एकांतिक नहीं आएगा। इसलिए इस पर विचार करना होता है। उसी तरह से कल का जो प्रसंग था सृष्टि संबंधी, अद्वैताचार्य संबंधी, उनमें कुछ तो तटस्थ है और कुछ उपकारी है। जैसे उनका भक्ति का भाव जो है, जो महाप्रभु के परिकरों के साथ में उनकी जो लीलाएं हैं और महाप्रभु के प्रति उनका जो भाव है, ये तो बहुत उपकारी है हम लोगों के। उनका जीवन चरित्र सुनने से हमको भक्ति होगी, और ये प्रकृति के उपादान कारण है, और ये सब ये हम लोग जान करके ही क्या करेंगे, नहीं। किंतु हाँ, नहीं जानने से कोई दूसरे धर्म वाले होंगे तो तुम्हारे मति को विकृत कर देंगे, कहा जाए ये कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है। इसलिए प्रचार के लिए ये जानने की जरूरत है, तो इसलिए उनको भी जानने की जरूरत है प्रचार के लिए। विशेष करके प्रचार में साधारण लोगों के यहाँ ये रागानुगा भक्ति का प्रचार नहीं चलेगा। प्रचार में जाने के बाद में यही सब प्रकृति से जगत की सृष्टि होती है, अपने आप स्वभाव ही है, इससे हो जाता है, ऐसे ऐसे सब लोग प्रश्न करते हैं। इसलिए इस सब का भी जानना उपादान कारण के संबंध में क्या बतलाया, बोलिए तो आप। अद्वैताचार्य जी सृष्टि के उपादान कारण माने क्या, कल क्या बतलाया, तो यही नहीं आप लोग धारण करेंगे तो कैसे होगा, इतना परिश्रम करना, नहीं जानते हैं बांके से पूछ लीजिए, पास में बैठा हुआ है, बतला देगा क्या।
देखा जाए महाविष्णु के अवतार हैं, वो सब सामान को जीवन की सृष्टि के लिए तो सब सामान को एकता रखते हैं।
क्या सामान है
महाविष्णु है जो उनकी,
वो कौन सा सामान है, जो उनको अलग से इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा कोई चीज है अलग से उनसे जो इकट्ठा करना पड़ता है उनको,
अलग से महाविष्णु की इच्छा से, उनकी इच्छा होती है ये उनके उपादान कारणों
को। उपादान कारण कल बतलाया, महत्त्व सहंकार इत्यादि से अद्वैताचार्य उस प्रकृति पर इच्छा करते हैं, इच्छा करके स्फूर्ति करा देते हैं, प्रकृति साम्य अवस्था को छोड़ करके वो अब चंचल हो जाती है, क्षुब्ध हो जाती है, और तब ये सब जगत का सृजन। और निमित्त कारण कौन है, स्वयं महाविष्णु
करना।
और द्वैताचार्य का वैशिष्ट क्या है, स्वयं शक्तिमान तत्व होते हुए भी कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति मैं भक्त उनका हूँ, सेवक हूँ, ये भाव। कृष्ण के अतिरिक्त जितने कृष्ण के प्रकाश हैं, परिकर हैं, यहाँ तक कि और की तो बात क्या, बलदेव प्रभु भी अपने को कृष्ण का सेवक मानते हैं, संकर्षण भी मानते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण सभी लोग, कल ये सब चीजें बतलाया था। अद्वैताचार्य की कृपा से ही हम चैतन्य महाप्रभु को जान सकते हैं, उनके चरणों में भजन कर सकते हैं। अब हम लोग बृहद भगवतामृत की तरफ में चल रहे हैं। बैकुंठ में पहुंच गए हैं, नारद जी से बातें हो रही हैं, इनको कुछ असंतोष हो गया है, असंतोष हो गया है, बैकुंठ में इनका मन नहीं लगता। जिस बैकुंठ के लिए लोग लालायित होते हैं, और बड़े बड़े बड़ी सुंदर रूप से भक्ति करते हैं, और बड़ी मुश्किल से बैकुंठ प्राप्ति होती है, और उस बैकुंठ में पहुंच करके अब प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चमर या वजन भी दे दिया, और इनके लिए कभी कभी बाल गोपाल रूप धारण करके गोचारण के लिए भी जाते हैं, ये भी लीला दिखलाते हैं, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। नारद जी मिल गए, नारद जी से अपना दुख कहना चाहते थे, नारद जी स्वयं जान गए और उनको उपदेश देने लगे। तो वही उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारा मन कुछ क्षुब्ध देखा जा रहा है, बैकुंठ में आने पर भी तुम्हारा मन क्षुब्ध हो रहा है। एक आदमी बचपन से ही वृंदावन जाने की सोच रहा था, बंगाल का या बिहार का या दक्षिण प्रदेश का, बहुत दिनों से सोच रहा हाय हाय कब मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां पर जमुना में स्नान करूंगा और वहां के कुंजों में लौटूंगा पोटूंगा, कभी राधा कुंड जाऊंगा कभी श्याम कुंड जाऊंगा। बहुत दिनों के बाद में उसको ऐसा सुयोग मिल गया, सबको छोड़ छाड़ करके वृंदावन में आ गया। वृंदावन कुछ दिन वृंदावन में रहा, बड़ा भाव से पहले तो चारों तरफ में घूमता, मिट्टी भी लगा लेता, सब कुछ करता, किंतु उसको कुछ चमत्कार नहीं दिखाई पड़ा। ऐसे चमत्कार दिख जाएगा? धीरे 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 उसका बुखार उतरने लग गया, जैसे भाटा हो ज्वार होता है ना, तो ज्वर ज्वर 104 डिग्री चढ़ गया। वृंदावन जाऊंगा, गोवर्धन राधा कुंड में जाऊंगा, तो बुखार चढ़ा, चढ़ने पर वो छोड़ दिया सब कुछ और छोड़ करके वृंदावन में आया। दो चार दिनों तक इधर गया, रास में देखा, इतना आनंद रास में, महाप्रभु जी की लीला, कृष्ण की लीला और सब चीजें, और एक मंदिर से दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, चौथे मंदिर, 10-20-25 मंदिरों में रोज वो और रोज परिक्रमा करता है। कोई कोई है वो 2-3 बार तक एक ही दिन में परिक्रमा कर लेता है, तो ये भी कर रहा है, जो उसके शरीर के द्वारा हो सकता है वो सब किया। कुछ दिन के बाद में भाटा आया, कुछ देखा नहीं, हृदय कुछ परिवर्तन नहीं, तो वो क्या करेगा बतलाओ, क्या करेगा? फिर जे तिमिरे से तिमिरे, कुछ मिला नहीं। अरे भाई, एक दो जन्मों का साधन का फल है वृंदावन में। और कोई कोई है वृंदावन में उनको रस आ रहा है, जहां जाते हैं आंखें तर हो जाती हैं, भाव में विभोर हो जाते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रश्न नहीं। किंतु जो नवीन हैं, अभी जिनका संबंध वैसा नहीं हुआ, वो वृंदावन में खाद पत्थर क्या देखेगा है? तो एक जगह वो गया माधुकरी लेने के लिए, माधुकरी में जो पीछे वाला था वो आगे आ गया उसके, तो ये पिछड़ गया, कह तुम आगे क्यों आया, तो तुम क्यों आया, बस लट्ठा लट्ठी हो गई, तो 2-4 लोगों ने उसे पीट दिया, तो मन और खराब हो गया। ऐसे ही कुछ घटनाएं हुई जिससे कि उसका मन बेचारे का टूट गया। यही वृंदावन उसका दर्शन। आज जो भाव के साथ में वृंदावन रहेगा, उसका मन कभी नहीं, उसको ये सब चीजें आएंगी नहीं। अब इसके मन में ऐसा तो ये नहीं है, किंतु इसके हृदय में एक लिप्सा है। लिप्सा माने किसको कहते हैं? लोभ से लिप्सा होती है, रस अथवा वो चीज पीने की, पाने की एक लालसा को लिप्सा कहते हैं, जिसको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। वो लिप्सा किसी के अंदर में, इसके अंदर में कुछ लिप्सा है। और वो कैसे आया? करी करी 1 करोड़ बरस साधन किया, करोड़ वर्ष भी कहा जाए तो वैकुंठ में गया, वहां से लौटा, ब्रह्मलोक गया, वहां से लौटा, कहां कहां से लौटा, इसमें कितने जन्म और कितनी यात्रा चले गए। आज उसके बाद में दीक्षा हुई, ऐसे नहीं बिना भजन का ही नहीं हो गया। और वो भजन क्या कर रहा है? गोपाल मंत्र की उपासना कर रहा है, जिसको ब्रह्मा जी ने भी पाया, हम लोगों का संप्रदाय का प्रधान मंत्र कर रहा है। उसके अंदर में अभी पूरी तो नहीं आई, किंतु वो चीज जो आ गई है लिप्सा लो, अब उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वैकुंठ एक सीमा है भक्ति प्राप्ति का, वही भक्ति क्या प्राप्ति का वो सीमा है वैकुंठ। हमारे शास्त्रों में भागवत के अतिरिक्त किसी भी शास्त्र में वैकुंठ को कम नहीं दिखलाया, वैकुंठ को ही सर्वोच्च स्थान बतलाया, इससे बढ़ करके कोई स्थान ही नहीं बतलाया। श्रीमद् भागवत में भी नवें स्कंध तक जहां देखते हैं, बस देखते हैं कि जय भी वो अजामिल को कहां ले गए, प्रहलाद की गति कहां है, इनको ध्रुव को गति कहां हुई, ध्रुवलोक माने वैकुंठ का एक अंश, तो इसलिए इसे बढ़कर के और कहीं नहीं बतलाया गया। और प्राप्ति भी भक्ति का प्राप्ति स्थान भी वैकुंठ बतलाया गया, किंतु दो एक जगहों में देखते हैं अक्रूर को और ब्रजवासियों को कृष्ण ने अपना धाम दिखलाया, किंतु इतने संक्षेप में, उसमें ऐसे छोटे रूप में है कि साधारण आदमी जो है वो नहीं समझेगा। दो एक जगहों में उसको जो सारा ग्रही है वही देखेंगे, सब लोग नहीं इसको देखेंगे। हंस कहाँ मिलते हैं? सब सरोवरों में हंस होते हैं, मानसरोवर, मानसरोवर कितने हैं? एक ही है मानसरोवर, तो वहीं पर ये मिलते हैं और जगह नहीं मिली। हम लोग सतदल कमल को देखना चाहते हैं, इधर उधर बहुत जगह, कहीं कहीं नहीं, एक दल भी कमल आजकल बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल से देखते हैं, तो हृदय में आनंद होता है। तो ये दुर्लभ चीजें हैं। उसके हृदय में गोपाल के प्रति कुछ दर्शन की, उनके साथ में बेलागाम प्रेम की कुछ इच्छा हो गई है, अनियंत्रित, बेलागाम माने अनियंत्रित कृष्ण से प्रेम करने की इस प्रिया जग उठी। अनियंत्रित प्रेम किसको कहते हैं? दो प्रकार से नियंत्रण होता है प्रेम का, घर वालों ने राधा जी को घर में बंद कर दिया या गोपियों को बंद कर दिया, ना? गोपियों को बंद कर दिया घर में, जाएगी तो टांग तोड़ देंगे, पति ही परमेश्वर है हमारी सेवा करो, नहीं तो याद रखना तुम्हारा काम भी तमाम कर देंगे। काम तमाम माने जानता है कि नहीं, उस लोक में भेज देंगे, ना? और समाज बदनामी कर रहा है, देखो तो अपने पति को छोड़ करके इधर में जा रही है, ये सब बाधाएं हैं, लोक का भय है, धर्म का भय है, यह एक प्रकार का नियंत्रण है प्रेम को। ये बाधक नहीं है प्रेम में, बल्कि ये प्रेम को प्रकाशक है और बढ़ाने वाला है। आया आ रहा है समझ में? नहीं, ये जितना ही बाधाएं आएंगी उतना ही प्रेम उसको पार करके कृष्ण से मिलना चाहेगा, इसलिए बाधक नहीं बल्कि ये उसको वृद्धि कारक है, अनुकूल से भी ऊपर ना, उसको बढ़ाने। जितना ये लोग बाधा देंगे उतना ही मिलने की आकांक्षा और बढ़ करके कृष्ण मिलेगा। और दूसरी बाधा है अपने आप लोग क्या कहेंगे कृष्ण से मिलेंगे तो। कृष्ण का ऐसा भाव, ऐश्वर्य भाव, जिसमें ऐसा प्रेम का स्थान नहीं, उनकी भगवत्ता, कृष्ण अपनी भगवत्ता को यदि प्रकाश करें, जैसे रामलीला में अपनी भगवत्ता का प्रयास प्रकाश करते हैं, ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं, किसी दूसरी भी कोई भी किसी से भी वो बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी किशोरी उनके सामने जाएगी तो रामचंद्र जी उसका मुख देखेंगे कि नहीं, महाप्रभु जी उनका मुख देखेंगे, क्या करेंगे, महाप्रभु जी तो उसका पैर का नख भी नहीं देखेंगे। राम और लक्ष्मण उसके हाथों में गले में कौन सा आभूषण वो पहने हैं वो नहीं जानते, पैरों का भी नहीं देखते, ऐसे लज्जाशील और धर्मज्ञ और धर्म के प्रति भीरू हैं भगवान होने पर भी। ऐसा भाव जहाँ है वहाँ प्रेम संकुचित, प्रेम संकुचित रहता है, अपना हो अपना इष्ट देव का, दूसरों के द्वारा दिया हुआ जो बाधाएं हैं वो अधिक नहीं बाधाएं हैं, यहाँ पर और सब उनको बाधा दे रहे हैं, अरे ये गोपाल गोपाल कृष्ण को गोपाल कहता है, ये क्या लंगोटी पहन करके बंसी एक बांस ले लिया और उसके बांस की नली को बजा रहा है, ये क्या कृष्ण गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, ये तो बड़ी लज्जा की बात है, नारायण होकर के रास करते हैं ये तो बड़ी लज्जा की, इसको ये लोग चिढ़ाते हैं कौन, ये वैकुंठ वाले सब, ये बाधक नहीं है, बाधक क्या है, उनको असंतोष का कारण क्या है, उनके असंतोष का कारण है नारायण के स्वरूप में वो प्रेम ही नहीं है, प्रेम का वो प्रकाश नहीं है जो ये चाहते हैं, साधारण भक्तों से प्रेम से मिल नहीं सकते, हंसी दिलगी नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते हैं, वो प्रेम बांधा हुआ प्रेम है, बंधा हुआ प्रेम, वो साधक की तरफ से रहने पर भी साध्य में वो चीज नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर प्रसन्नता नहीं है। नारद जी का कहने का ये सब भाव है, नारद जी पहले उनको बतला करके उनको समझाना चाहते हैं जे नारायण लोक में ही रहो, किंतु वहां का तत्व तो बतला रहे हैं, इसी के माध्यम से बतला रहे हैं उनको, यहां तक आया है कि कृष्ण और कृष्ण भी अवतारी हैं, नारायण भी अवतारी है, नारायण अवतार नहीं लेते, समस्त अवतारों के बीज है ये, भगवान के जो लक्षण हैं 64 गुणों में से जिनमें 60 गुण हैं, 55 गुण हैं शंकर इत्यादि में और 60 गुण हैं नारायण में पूर्ण रूप से, तो ये जो 5 गुण जो अधिक हैं उसमें 5 गुण, 55 से 60 5 गुण, जिसमें हतारी गति दायकत्व एक और ऐश्वर्य की परिसीमा वहां तक सीमा इनमें है और विविध अवतारावली बीज 3 और नित्य नूतनत्व 4 और एक अप्राकृत गुणों के भंडार या कुछ ऐसा है, ये 5 गुण और देवताओं की अपेक्षा उनमें अधिक है, इसलिए नारायण भी भगवान हैं और अवतारावली बीज हैं, इसलिए ये अवतारी है, कृष्ण भी अवतारी है, किंतु दोनों में पार्थक्य क्या है, कल बतलाया था एक क्या,
जो अवतार नहीं हो
सकता, नारायण का अवतार नहीं, अवतार नहीं है ऐसा मत कहना, किंतु समझो जो किस लिए नहीं कहा गया, नारायण अपने रूप में जो वैकुंठ में जो रूप है वही रूप लेकर के इस जगत में नहीं आएंगे। वैसे उनका हर एक गृह और जितने भी दशावतार इत्यादि हैं सब उन्हीं के ही अवतार हैं, किंतु नारायण खुद अपने उशंख चक्र गदा पद्म को लेकर के कस्तूरी और ये सब जो लक्षण हैं वो भगवत्ता लेकर के उसी रूप में किसी के पुत्र के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में आकर के ये सब लीला नहीं कर सकते। कृष्ण का क्या है, जो लोक वृंदावन में जो कृष्ण है जैसे जिस रूप में बंसी वादन करते हुए गोपों के साथ में खेलना, गोपियों के साथ में, ठीक उसी रूप में ही अपने धाम को और परिकरों को लेकर के उसी रूप में आते हैं जिस तरह से उनका रूप। जैसे बद्री नारायण में कौन है, कौन जाने छो, देखा छो कौन नर नारायण, ये किन के अवतार हैं, नारायण ना? अब वो नारायण ही आए हैं किंतु किस रूप में आए, नर और नारायण, नर और नारायण का रूप और नारायण का रूप एक नहीं है। यहाँ पर बद्री नारायण नारायण है और वहां पर क्या है, लक्ष्मी नारायण है, वैकुंठाधिपति नारायण, ये दोनों में अंतर है। उसी तरह से बामन के रूप में आए, यहाँ पर लक्ष्मी भी आई किंतु यहाँ पर बामन नारायण है और वहां पर है लक्ष्मी नारायण वैकुंठाधिपति नारायण। कर्णाब्दिशाही के रूप में आए हैं वो भी नारायण है क्योंकि वो शेष पर शयन करते हैं किंतु रूप अलग हो गया, कार्य अलग हो गया। नारायण का वह रूप और वह कार्य जो वहां करते हैं यहाँ नहीं है, इसलिए नारायण का कोई अवतार नहीं। वैसे अवतार है तो इस रूप स्वयं नारायण उतर करके आते हैं, किंतु कृष्ण का क्या है, कृष्ण अपने उन्हीं परिकरों को लेकर के उसी किशोर रूप को लेकर के उसी लीलाओं को लेकर के उसी वहाँ की धामों को लेकर के राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना चौरासी क्रोस ब्रजमंडल को लेकर के ये उनकी विशेषता है। नारायण ऐसा नहीं करते, इसलिए कृष्ण के अवतारी का एक विशेषण होता है। वहां पर जैसे भक्तों के साथ में उनका आदान प्रदान होता है ऐसे ही यहाँ पर हतारीगत दायकत्व समझो। भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब हतारीगत दायक, हतारी माने हत अथवा हता अरि गति दायक, उनके द्वारा जो दुश्मनी के रूप में शत्रु के रूप में मारे गए हैं उनको गति देने वाले हैं सभी है? रामचंद्र, ये नृसिंह जी, वो बामन जी, परशुराम जी, जितने भी हैं ये सब हतारी गति दायक। कृष्ण में ये हतारी गति दायकत्व है कि नहीं है, ये तो है ही है और भी चार गुण अधिक है, किंतु ये जो ये गतियां जो पांच जो स्पेशल हैं इसमें भी चरम अवधि तक ये सभी गुण हैं पूर्णतम रूप में। नारायण में पूर्ण है और अवतार में पूर्ण है किंतु कृष्ण में
परिपूर्णतम,
जैसे कोई भी ऐसा अवतार नहीं है नारायण से लेकर के नृसिंहदेव तक जितने भी अवतार हैं मार करके उसे गति दे देंगे, क्या उनको मार करके ऐसा गति देंगे धन ऐश्वर्य और गति सुतल द्वितल और स्वर्ग ब्रह्मलोक धाम तक और ये सब जितने प्रकार की गतियां हैं ये गति दे दो, किंतु मोक्ष नहीं दे, मोक्ष देंगे ही नहीं ऐसा नहीं, मोक्ष देंगे किंतु शत्रुओं को नहीं जिनको मारा, जिन्होंने कुछ उसी रूप में भजन किया है। जैसे रामलीला में हम देखते हैं कौन ऋषि थे जो कीर्तन करते थे, सुतीक्ष्ण जी और एक थे उनके पहले सर्वभंग ऋषि इत्यादि। सर्वभंग ऋषि ब्रह्म तत्व की उपासना कर रहे थे। सुना जे रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, वो ब्रह्म है, तो उनके दर्शन करने के लिए ठहर गए। ठहरने के बाद में रामचंद्र जी आए, उनका दर्शन किया बढ़िया, और कहा जे प्रभु हमको अपनी गति दीजिए। तो उनके शरीर से एक तेज निकला और तेज जाकर के रामचंद्र जी के शरीर में ये मुख छूनता हुआ। दुर्भागा आदमी, रामचंद्र जी का दर्शन करके उन्होंने मोक्ष मांग लिया। ये अभेद की गति, इसलिए मोक्ष दे सकते हैं राम। राम क्या, जितने अवतार हैं सभी दे सकते हैं, किंतु किसी शत्रु के रूप में जो है उनको प्रेम नहीं दे सकते। मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति ही तू विष्णुआंग्री लाभ, भगवान के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति का नाम जो मुक्ति है, ये मुक्ति का जो चरम गति है ये लोग नहीं दे सकेंगे, विशेष करके शत्रुओं को मार करके नहीं देंगे। और कृष्ण ऐसे हैं जिन जिन शत्रुओं को मारा है उनको सहज ही चुटकी बजाते ही मोक्ष क्या प्रेम तक दे दिया है। राम हाँ, जो उनकी उपासना कर रहे हैं और मुक्ति चाहता है तो दे देंगे, तब तो उसको प्रेम देंगे। प्रेम माने अपना प्रेम, जिसमें जितना जिनके अवतार में है शक्ति उतना प्रेम। नारायण दे देंगे दास्य इत्यादि तक, रामचंद्र ये दास्य सख और वात्सल्य या सख का आधार तक ये सब दे देंगे, इतना तक तो दे देंगे। और कृष्ण में है जितने भी असुरों को मार, जैसे काल नेमी को किसने मारा है, अरे वो नहीं, जो काल नेमी कंस हुआ, ये दूसरा काल नेमी है, इसको विष्णु के रूप में उन्होंने मारा था है? तो इस काल नेमी, ये काल नेमी को विष्णु तत्व ने मारा किंतु उसकी मुक्ति नहीं हुई, वही कंस हुआ है? ये निशिंग जी ने हिरण्यकश्यपु को मारा और बरा जी ने हिरण्याक्ष को मारा, इन लोगों को भी मुक्ति उस जन्म में नहीं हुई, किंतु कृष्ण ने जितने भी असुरों को मारा उनकी तो सदगति माने मोक्ष तो हुआ ही, यहाँ तक कि किसी किसी लोगों को उन्होंने प्रेम तक भी दिया, जैसे पूतना को दिया, माता की गति बना करके आई तो उसको धात्री उचित गति दी। धात्री उचित माने क्या, माता की गति मत समझन लेना, और उसको ब्रज की, ब्रज उसको प्राप्ति नहीं हुआ, गोलोक में स्वकीय भाव में एज ए दासी दूध पिलाने वाली ऐसी गति, नहीं तो तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, यशोदा के समकक्ष हो जाएगी, इसलिए ये नहीं। गोलोक में स्वकीय भाव में ऐश्वर्य भाव में वहां पर दासी के रूप में वो, तो ये कृष्ण दे सकते हैं और कोई भी अवतार नहीं दे सकता। और जिसको मारेंगे वो साधारण गतियां देंगे, किंतु ये मत समझना मोक्ष देंगे ही नहीं, मोक्ष भी दे सकते हैं, अपना प्रेम भी दे देंगे। जैसे प्रहलाद महाराज जी को नृसिंहदेव जी ने क्या दिया, मोक्ष दिया, मोक्ष तो चाहते नहीं है। चित्रकेतु महाराज जी थे, उनको भगवान ने क्या दिया, उन्होंने मोक्ष मांगा कि नहीं, मोक्ष नहीं चाहते थे, इसका कोई प्रमाण है श्लोक में, कोई बोलो तो,
ये है तो याद नहीं है।
याद क्यों नहीं है,
याद हो जाएगी,
याद हो जाएगा, कौन क्या है, अरे पहला श्लोक बोलो, इसके बाद दूसरा, पुनर्भव मैंने क्या, आप मुक्ति देंगे तो भी नहीं दूंगा, अपनर्भव न भवम पुनर, इस जगत में पुनः आना जाना ये बंद जहाँ हो जाता है, जिस इसको जो मुक्ति कहते हैं वो भी मैं नहीं चाहता, इसलिए मुक्ति को भी ये ठुकरा रहे हैं, देने पर भी भगवान को। नृसिंह देव जी उनको मुक्ति दे रहे थे प्रहलाद महाराज जी को, किंतु उन्होंने भी नहीं दिया। इसी तरह से जो भक्त लोग हैं नहीं चाहते, किंतु यदि कोई चाहता है तो तुरंत दे सकते हैं। और दिया क्या का, चाहे जहां भी हमारा जन्म हो, छह बजे आजकल तो अभी प्रकाश रहता है, 6 बजे दिन बढ़ने लगे, 5:20 में, अच्छा ठीक। तो ना क्या बतला रहा
है, दे सकते हैं
नहीं आया, याद नहीं, याद नहीं,
जहाँ भी जन्म हो।
हाँ, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जेसु जेसु नाथ ब्रजाम्य हम तेसु तेसु अचला भक्ति अब्दभिचारिणी च। कहीं भी हमारा जन्म हो हम जन्म से नहीं डरते, बत उत्तम श्लेख जनेशु सक्षम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन्माया तो आत्मजदार गेहेशु न नाथ आसक्ति हुआ। इस संसार में आसक्ति हो मैं कहाँ जाऊँ, और आपके चरणों अब्दभिचारिणी भक्ति, अब्दभिचारिणी मैंने न अब्दभिचारिणी स्थिरा, जैसे व्यभिचारिणी या व्यभिचारी व्यक्ति इधर उधर दौड़ता है, ऐसा न मेरी मति दौड़े, मति स्त्रीलिंग है बुद्धि, इसलिए उसको व्यभिचारिणी कहा। इसलिए अब्दभिचारिणी हमारी बुद्धि हो करके भगवान के चरणों में एकांतिक रूप से उनके चरण में लग जाए, और कहीं नहीं लगे, कभी दूसरी कोई चीज चाहे नहीं। प्रहलाद महाराज जी को ये चीज दे दिया, इसलिए प्रेम भी दे सकते हैं। रामचंद्र जी ने मुक्ति दिया, मुक्ति का वो सर्वभंग इत्यादि को देख लाया, और एक चीज उनकी जो उपासना किया प्रेम से, वहां की जनकपुर की राजकुमारियों ने क्या मांगा, उन्होंने अपने प्रति आपको ही पति के रूप में हम लोग ग्रहण करें, विवाह हो तो आपके साथ। तो उनको क्या दिया, उनको मुक्ति देंगे, अपना प्रेम दिया ना, कहा जी अच्छा रास्ता बतला दिया, मैं बहु स्त्री को धारण नहीं, एक पति व्रता धारण करने वाला हूं। इसलिए कृष्ण लीला में तुम लोग वहां गोपियों के गर्भ में जन्म लेना, और वहां पर तुम सब लोगों की इच्छाओं को पूर्ण, दंडकारण्य वासियों की भी इच्छा की पूर्ति की, कैसे पी थी, अच्छा तुम लोग गोपी कृष्ण में जन्म लेना। क्यों कहा, एक दिन बतलाया था डायरेक्ट उनको क्यों नहीं भेज दिया गोलोक जहाँ पर की, हाँ अभिमान नहीं उत्पन्न होगा, यहाँ पर रह जाएगा कुछ, डायरेक्ट इसलिए नहीं भेजते। एक आदमी लॉ पास कर लिया और मजिस्ट्रेट का कोर्स या जज का कोर्स पास कर दिया, तो जज बना देंगे क्या करेंगे, अरे भैया ट्रेनिंग करो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जज के साथ में कुछ दिन रहो, तब फिर उनको स्वतंत्र। ऐसे ही पहले वहां पर जाकर के अप्रेंटिसशिप करो, अप्रेंटिसशिप मैंने वहां जाकर के कुछ सीखना पड़ेगा व्यक्तिगत, जैसे विवाह होने पर कोई लड़की ससुर घर में गई, लीपना पोतना बर्तन मांजना झाड़ू देना नहीं सीखा, रसोई बनाना नहीं सीखा, रोज उसको गाली सुननी पड़ेगी ना। और जिसकी मैया ने, जिसके घर वालों ने सब चीज सिखा दिया, बेटी आज तबीयत खराब है, ये नहीं कहेगी जो रसोई बनाओ, बेटी मेरी तबीयत खराब है जरा बर्तन भी मांज लो, जरा घर में झाड़ू दे देना, आज तो मेरी ऐसी तबीयत खराब है मैं उठ नहीं सकती, जरा जैसे तैसे रोटी तो दखे बना करो, ऐसे चला के चतुराई कर करके उसको सब विद्या पारंगत करा दे, प्रैक्टिकल शिक्षा। ऐसे ही इस जगत में प्रैक्टिकल शिक्षा इस जगत में नहीं है, कहाँ है? जहाँ पर कि भगवान की प्रकट लीलाएं हैं वहीं पर है ना? और कहीं नहीं है। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में, वहाँ पर नित्य सिद्धाओं के संग में अप्रेंटिसशिप में जा करके कुछ दिनों के लिए सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट भेजने से वो अभिमान ही नहीं आएगा। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि प्रकट ब्रज में जन्म होकर के या तो सख्य हो, वात्सल्य हो, मधुर हो, दास्य हो, जो कोई भी हो, वो वहाँ पर सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आज प्रसंग में ही नहीं आया, उतर ही नहीं सका। प्रसंग ये चल रहा है, ये कृष्ण अवतारी हैं तो नारायण भी अवतारी हैं, तो उनका क्या वैशिष्ट्य है? और दूसरी बात, कृष्ण के परिकरों का भी वैशिष्ट्य है ना? कृष्ण का तो वैशिष्ट्य है, उनके परिकरों का भी, जो उनकी सेवा करने वाले हैं, सेविया करने वाली हैं, उनका भी वैशिष्ट्य है। कृष्ण का वैशिष्ट्य मुख्य नहीं है ना? कृष्ण का वैशिष्ट्य मुख्य नहीं है, वो तो आत्मकाम आत्माराम के चूड़ामणि है और सफेद कांच के समान है। गुलाब का फूल उस पर रख दो तो कैसा हो जाएगा उसका रंग? और पीला कनेर का फूल रख दो, कोई काला फूल है तो रख दो तो वैसा ही दिखेगा। तो कृष्ण अपने आश्रयों के संबंध से, परिकरों के संबंध से उनके रस का वैशिष्ट्य प्रकट होता है सब उनमें, किंतु जैसा उनका परिकर होगा वैसे ही होगा।